फिर आप देखिए, रब्बिल आलमीन कहकर बंदा आप कंधों से बोझ उतारता है कि मैं अपने रब की जिम्मेदारी हूं, मुझे यकीन है मेरा रब मुझे भूखा नहीं मारेगा, एक कीड़े को भी वो दरख्त की तह में छुपे हुए को भी रिस्क देके सुलाता है ना। आप देखिए, पानी के अंदर या कहीं कोई देखे तो उसको रिस्क मिलता है ना, तो क्या मेरा रब मुझे नहीं देगा? जब सारे जहान को वो पाल रहा है तो क्या फिर वो मुझे नहीं पालेगा? मुझे किस बात की फिक्र? अक्सर आप देखिए कि हमारे कल्चर के लोगों के जहनों में तफक्कुर आता है, हाय बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनके रिश्ते कहाँ से आएंगे, हाय बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी जॉब कहाँ से आएगी। सुना मैं आपने, तफक्कुरात में जीते हैं, हाय इस महीने का बिल कहाँ से आएगा, हाय पानी बिजली खाना, हाय पता नहीं आगे जाके क्या होगा, हाय मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर लें, हाय मेरी सास मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ ना कर दे। आप देखिए, अनहोनी बातों का खौफ, और एकदम आप कहिए रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब जब वो है तो मुझे क्या फिक्र है। एक शख्स था तो उसने सोचा कि अल्लाह पता नहीं तो अगले साल मुझे कितना को रिस्क देगा, हाय मेरा रिस्क खत्म ना हो जाए, ऐसे जैसे ख्याल आता है ना। उसके बाद कहते हैं कि वो कहीं गया तो कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने लगा, तो उसने किसी दरख्त को जब काटा ना तो उसके अंदर तह में देखा कि एक छोटा सा पौधा है, पत्ता है, और उस पत्ते को एक कीड़ा खा रहा है, कीड़े के मुंह में पत्ता है। कहने लगा रब, इस दरख्त की तह में अगर तू इस कीड़े को रिस्क दे सकता है तो तू मुझे भी रिस्क दे सकता है। रब्बिल आलमीन, अल्लाह की कसम नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं और आप हर गम से बेनियाज हो जाएं अगर हम नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को समझ के पढ़ें। फिर हम ये ना कहें कि अच्छा अब रिस्क की तलाश में दियारे गैर चलते हैं, अच्छा अब इकॉनमी डूब गई तो क्या होगा, हाय मियाँ की जॉब चली गई तो खाएंगे कहाँ से, कारोबार डूब रहे तो करेंगे क्या, मेरा आपका ये काम नहीं है। कभी आपके छोटे छोटे बच्चे ये बातें करने लग जाएं, अम्मी इस महीने बिजली का बिल कौन देगा, अम्मी ग्रोसरी कहाँ से आती है, तो आप क्या कहेंगे, बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, ये तुम्हारा काम है ना अम्मी अबू करने। तो जब अम्मी अब्बू के होते हुए एक बच्चा ये सोचना रखे तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात के होते हुए मैं और आप क्यों ये सोचें, मुझे और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में इस गम में तो नहीं भेजा था, अल्लाह ने हमें कहा था कि तुम काम करो। सूरत मुल्क की पहली आयत, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में ज़मीन व आसमान की बादशाहत है, जिसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। मैं और आप इस दुनिया में एक कमरा इम्तहान में, अब आप अपने बच्चों का सोचिए, अपना भी याद होगा, मुझे भी याद है, आज भी याद है, जब हमारे इम्तिहान होते हैं ना या बच्चों के इम्तिहान हो तो माएँ क्या कहती हैं, चलो बेटा तुम पढ़ो मैं तुम्हारे काम कर दूंगी। माएँ ट्रे लगाकर खाना तक अंदर बेडरूम में देती हैं कि इसने सुबह बगैर नाश्ते के चले जाना है, मैं इसको चाय पानी बना कर दे ताकि ये भूखी ना जाए, स्त्री भी वो कर देंगी है ना, क्योंकि इम्तिहान का दिन है ना बच्ची का। आगे पीछे बच्चियां जितना मर्जी काम करें, माएँ कहती हैं करो, लेकिन तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं ना, अब तुम काम ना करना। अल्लाह ने इससे भी 70 गुना ज्यादा प्यार का इजहार किया, ये दुनिया तुम्हारा इम्तिहान है, मैं और आप इस दुनिया में इम्तिहान में, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि इम्तिहान के दिनों में तुम अपने खाने पीने की फिक्र ना करो, मैं करूंगा, तुम मेरे करो मैं तुम्हारे करूंगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का बन जाता है ना अल्लाह उसका बन जाता है। और आप इमेजिन कीजिए कि जब हमें जिंदगी का ये मकसद समझ आता है ना कि हम इधर क्यों आए हैं, तो सारे काम ही आसान है। मिसाल देती हूँ कि आप सिस्टर्स यहां आ जाएं, आपको पता था ना कि आप अल्लाह के घर आ रही हैं, आप दर्स सुनेंगे, आप जहन बनाकर आए थे कि चले आज जाते हैं कोई बात सुनकर आते हैं, आपके घर से निकलने से पहले से लेके यहां बैठने तक हर चीज आपकी इसी सोच के तहत थी कि आप अल्लाह का कलाम सुनने जा रही हैं। अब मिसाल देती हूं कि अगर आप कल रात किसी शादी में जाने वाली हो और आपको पता है कि मैंने जाना है, तो क्या आपकी सोच यही होगी यहां आते हुए थी, फर्क होगी ना, शादी में जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, दुल्हन होगी, कपड़े होंगे, जो एक तसव्वुर आता है ना किसी पार्टी का, किसी फन का, वो आता है। बस इसको जहन में रख लीजिए, मोमिन को ये सारी जिंदगी यकीन रहता है कि ये दुनिया फन प्लेक्स नहीं है, ये दुनिया पार्टी प्लेक्स नहीं है, ये दुनिया कमरा इम्तिहान है। ये सोच, ये माइंडसेट सीधा होता है ना, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। आप सोचते हैं कि हम दुनिया में खेलने कूदने नहीं आए, हम दुनिया में मौज मस्ती करने नहीं आए, हम इम्तिहान देने आए हैं। काफिर क्या सोचता है कि मैं इस दुनिया में खेलने कूदने आया हूं, मौज मस्ती के लिए आया हूं, बस यही थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अफसोस होता है उस वक्त जब मुसलमान भी उसी सोच पे आ जाता है जिस पे काफिर है। अल्लाह ताला सूरह स्वात में कहते हैं, ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू, ये काफिरों का गुमान है क्या कि हमने इस दुनिया को खेल तमाशे के लिए बनाया। अफहसिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान किए कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किए, और क्या तुम आजमाए ना जाओगे, और क्या तुम वापस ना पलटोगे। तो लिहाजा सूरत फातिहा पढ़ते और सुनते वक्त दिल में ये ख्याल रखिए कि अल्लाह ने मुझे एक मकसद के साथ पैदा किया, और उसकी शान क्या है, अर्रहमान अर्रहीम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला और सबसे ज्यादा रहीम। देखिए लफ्ज है रहमान और रहीम, उर्दू में है ना, अल हटा दें तो उर्दू के लफ्ज हैं, और इसी से मिलते हुए जरा आप उर्दू के चंद लफ्ज बोलिए। रहम, मां का रहम क्या होता है, यूट्रस, मदर वूम के साथ अल्लाह ने रहमान और रहीम को मिला दिया। जो माँ की अपने बच्चे के लिए मोहब्बत होती है ना, अल्लाह ने उसको रहमान और रहीम से रखा। और यहां तो रहमान है, कोई आप में से बता सकता है कि रहमान का सबसे खूबसूरत तारुफ क्या है, उसने खुद कराया। जी बोलिए, अभी आप कुछ बोल रहे हैं इधर से। सूरत अर रहमान में क्या पहला जुमला है, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान का रहम इस दुनिया में क्या है कि उसने कुरान सिखाया। दुनिया में सबसे ज्यादा रहम उस पे हुआ जिसको अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा, और कुरान को सिखाने वाला सबसे पहला अल्लाह है। अर रहमान अल्लमल कुरान, फिर उसके बाद बोलना सुनना सिखाया, और ये मैं और आप अल्लाह के रहम की वजह से जी रहे हैं। अगर अल्लाह के रहम का हाल गुनाहगारों को पता चल जाए तो फरमाए वो भी जन्नत की उम्र लगा ले। कतबाला नफ्सिहि रहमा, उसने तो अपने ऊपर लिख लिया है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। सूरत अलनाम में आता है, कतबाला नफ्सिहि रहमा, डोंट वरी, मैंने अपने ऊपर रहमत लिखी हुई है। अल्लाह की शान रहम की है, उसकी बहुत सारी सिफात है, 99 नेम्स आप पढ़ते सुनते हैं, कहीं अल वदूद अल कहार अल जब्बार भी है, लेकिन सारी सिफात पे जो सिफत है ना वो अर रहमान की है, उसका रहम हम पे है। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत को पाने का तरीका क्या है, किस पे अल्लाह की रहमत आती है। सूरत अल अराफ में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि अन करीब में अपनी रहमत उन लोगों पे लिख दूंगा जो नमाजों को कायम करते, जकात देते और अल्लाह के बाकी अहकामात को माने। चलिए अब जब अल्लाह ताला रहमान है रहीम है, तो फिर मैं क्या बनूं, मुझे क्या करना है, मेरे भी दिल में रहम होना चाहिए। मैं किसी के साथ कैसे रहम करूं, हमारे दिल में बचपन में पड़ी हुई वो कहानियां याद आ जाती हैं, रहम दिल बादशाह, किसी को देखा उस पर रहम आ गया। लेकिन मैं अक्सर अपने दिल से ये पूछती हूँ, हम मुसलमान जिसको आज उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, अल्लाह ने हमें वो दीन हाथ में दे दिया, बगैर कुर्बानियों के अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, क्या मेरा और आपका दिल इंसानियत के लिए नहीं तड़पता। आप सोचिए अगर हम किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा होते और हमारे नेबर में कोई मुस्लिम रहता और वो हमसे इतना खूबसूरत दीन ही शेयर ना करता, तो क्या कल क्यामत के दिन हम उसको माफ करते। मुझे और आपको इंसानियत पे अगर रहम करना है ना, तो ये खूबसूरत दीन जाके उन तक पहुंचाना है। मुझे और आपको अल्लाह ने इसी काम के लिए दुनिया में भेजा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की खैर के लिए भेजा गया। हम में से बहुत सारे लोग हैं उनको सोशल वर्क का बहुत शौक होता है, शादियां करवाते हैं लोगों की, लोगों की मदद करते हैं, उनको ऑफिसेज में लेकर जाते हैं, हर तरह से मुमकिन है। आज भी अल्लाह ना करे किसी दुनिया के मुल्क में जलजला आए तो लोग पैसा जमा करते, कपड़े जमा करते, फिर वहां भेजते हैं। ये सारे खैर के काम है। लेकिन आपको तक कि सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है, कोई आप में से बताए, मुझे अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोगों की आखिरत की फिक्र करें। कभी आपने देखा कि आप बाहर गए, बस में बैठे, जहाज में गए, और आपके इर्द गिर्द लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह इनको पता ही नहीं है कि जिस बेकसी की जिंदगी ये गुजार रहे हैं इसका अंजाम क्या है। इनको होश नहीं है कि ये कल क्या होगा। मुझे और आपको अपने दिल में लोगों की तड़प पैदा करनी है। एक मौके पे नबी सल्लम बैठे थे, सहाबे कराम भी आपके साथ थे, तो कैदियों में एक औरत आई तो उसका बच्चा गुम गया, छोटा गोद का बच्चा था, माँ की गोद से निकल कर कहीं गया। अब वो माँ बावलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आप तसव्वुर में लाएं कैसी लग रही होगी। जो किसी का बच्चा मिलता है ना उसको पकड़ती है, दूध पिलाने लग जाती है, बच्चा किधर है, बच्चा किधर है। इतने में उसने देखा कि उसका बच्चा दूर धूप में खड़ा है और उसके पाँव जल रहे हैं, तो रो रहा है। और वो माँ यहाँ से जाकर उस बच्चे को पकड़ती है और उसको सीने से लगाती है, और क्या चूमती है, उसका माथा, सर नहीं, उसके पाँव के तलवे चूमती है कि मेरे बच्चे तेरे पाँव जल गए। अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे थे, आपकी आंखें नम थी। आपने कहा सहाबा कराम से ये बताओ कि अगर कोई तुमसे कहे कि ये माँ खुद अपने बच्चे को किसी आग के तंदूर में फेंक दे तो तुम मानोगे। अल्लाह के नबी कभी नहीं मानेंगे। अभी तो हमने देखा ये इसके तलवों को बर्दाश्त नहीं कर सकी जलता, ये कहां उसको जलता देखेगी। तो आपने फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औ कमा काला, अल्लाह को अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार है, फिर वो अपने बंदों को आग में कैसे डालेगा। मा यफलुल्लाहु बि अज़ाबिकुम, क्या करेगा लोगो अल्लाह अजाब देकर तुमको। अल्लाह ने मुझे और आपको और इंसानों को आग के लिए नहीं पैदा किया। इन शकर तुम वहां मन तुम, शुक्र कर लो और ईमान ले आओ। वो कान अल्लाह शाकिर नलीमा, वो कदरदान है, वो शुक्र गुजार है। तो लिहाजा मुझे और आपको लोगों के लिए रहमत बनना है। हमारे प्यारे नबी का लकब क्या था, रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह कौन है, अर रहमान अर रहीम। नबी कौन है, रहमतुल्लिल आलमीन। तो उम्मत को कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इस जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। लेकिन याद रखिए कि किसी के लिए दिल कब पसीजेगा, जब हम सच्ची मोहब्बत पैदा करेंगे अपने दिलों में। आपका पेट भरा हो और आपको यकीन हो कि आपके घर में तो अगले एक महीने का भी खाना है, लेकिन सिर्फ आपके साथ वाली दीवार में जो बच्चे हैं मां के, वो भूख से रो रो के सो गए, सच बताइए क्या आपको अपने उस खाए की खुशी होगी। गले से नहीं उतरेगा। मैं कहती हूँ इसको भी छोड़ दीजिए, आप यहाँ बेहतरीन खाना खाएं और आपको अपना कोई भाई बहन या खाला फूफी पाकिस्तान की याद आ जाए कि जिनके घर में हो सकता है फाके हों, तो यहाँ बैठे आपके गले से नहीं उतरेगा कि हाय मेरा भाई इतना भूखा होगा, उसके बच्चों के पास कुछ नहीं और मैं इतना अच्छा खा पी रही हूँ। बस इस दर्द को पैदा कीजिए अपने अंदर, किस लिए, गैरों के लिए। जिस दिन हम उम्मते मुस्लिमा ने लोगों के लिए तड़पना शुरू कर दिया, इंसानियत का नसीब बदल जाएगा। ये अल्लाह के नबी की तड़प थी जिसने आपको बेचैन रखा। कभी आप सोचें कि नबी सल्लम कितने सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। अब मैं आपको सीरत में ले नहीं जाना चाहती, वरना तो फिर हम इधर आ ही नहीं सकेंगे। इतने दिलगुदाज पहलू हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल नबी सल्लम के हाल पे गौर कीजिए, जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई, आपको वही मिली, नबूवत मिली, आप क्या थे, मक्का के एक कामयाब ताजिर थे। मक्का की अमीर तरीन औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला से आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे थे, कितनी पुरसकून जिंदगी होगी आपकी। आप आज की जुबान में कहें, सिर्फ टर्म्स इस्तेमाल करती हूँ, नबी के लिए तो दिल भी नहीं करता ऐसे सोचें, लेकिन आप कह लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर के बेस्ट, बोलिए क्या थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, इधर से माल लेकर उधर भेजते, शाम शाम से माल लेकर इधर आते, कितना सुकून था, कितना आसान होता अगर अल्लाह के नबी इसी तरह से जिंदगी बसर करते। लेकिन जिस दिन इकरा बिस्मि रब्बी कल लजी खलक की आयतें उतरी, उसके बाद देखिए अल्लाह के नबी के दिल की जो कैफियत थी। और जब कौम फानजिर सूरत मुद्दसिर की आयतें उतर गई, खड़े होइए और लोगों को वॉर्न कीजिए, उसके बाद वो अल्लाह का बंदा ऐसा खड़ा हुआ कि बिस्तरे मर्ग तक लोगों को दीन की बातें बताते गए कि असलातु वमा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल रखो और अपने लौंडी गुलामों का, अपनी बीवियों का ख्याल रखो। कितनी मुश्किल जिंदगी गुजरी आपकी, आप सीरत पढ़ते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज हम मुसलमानों में इसका तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि और क्या करें, नमाज तो पढ़ ली, अभी आज 24 दिन गुजर गए, माशाल्लाह हमने 29 रोजे भी रखे, बड़े लंबे रखे, गर्मी के रखे, ये अलग बात है कि हर रोज ठंडे तरबूज से खोले और हर रोज बिरयानी पुलाव चावल खाने खाए। आपके शहर का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस शहर में मैं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इफ्तारी थी शाम को, और एवरेज 300 से 400 लोगों की इफ्तारी उन्होंने बताया कि हर मस्जिद में आती है। मैंने नहीं किसी एक दिन की इफ्तारी में ये देखा कि चलो कोई उबले हुए चावल और साथ खाली दाल दे के उन्होंने आपको तरखा दिया। अगर कभी दाल होगी तो साथ उसके चिकन रो जरूर होगा, या पता नहीं क्या बुलाई होंगी। शादियों के खाने जो हम कभी शादी में खाते थे, जिसका फुल मील कहते हैं, 7-5 डिशेस का, अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में रमजान में कमोबेश वही सर्व हुआ है। 1200 1500 से लेकर $2000 तक एक इफ्तारी में एक दिन का खाना बना। ये अब सारी बातें हम पीछे बहुत कर चुके हैं अपने इफ्तारी के दरसों में भी, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है इस वक्त, जो खुद से भी है, अगर जन्नत इतनी आसान होती, इतने लंबे लंबे रोजे रख कर जन्नत मिल जाती, तो अल्लाह के नबी अपने सहाबा को गर्मियों की दोपहर में रोजा रखवाकर बदर तक क्यों लेकर जाते, और अल्लाह के नबी रमजान के दिनों में हिजरतें क्यों करते, और फतेह मक्का का सफर क्यों होता। पॉइंट गौर करने का, अगर हमारी इबादत से अल्लाह ताला खुश हो जाता ना, और अगर दुनिया में इस्लाम को गलबा सिर्फ हमारे मुसलमानों के नमाज रोजे हज जकात से होता, तो फिर कभी भी वल्लाही बदर के मैदान में मुंह के रोजे के साथ ना जाते लोग। हमारा दीन प्रैक्टिकल दीन है, ये इबादत हमें इस काबिल करती है कि हम अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करें। और याद रखिए, इसका नुक्ता आगाज तबलीग से होता है, इबलाग बल्लिगु अन्नी वलौ आया, और तबलीग से पहले क्या चाहिए, तालीम। आप और मैं जिस दिन इस कुरान को अपनी जिंदगी में खोलते हैं ना, तो हमारी जिंदगी का एक बाब खुलता है। आप में से जिन सिस्टर्स ने रमजान में दौरे कुरान किया, उन्होंने यकीनन इस दर्द को महसूस किया होगा कि अब हमें इसको इन डेप्थ पढ़ना है। जिस दिन आप इस कुरान को अपने सीने में डाल लेते हैं ना, बस उसके बाद वो कहते हैं सोने के दिन गए, अब उठो जागो और जगाओ, चैन नहीं पड़ता। कैसे सो सकते हैं जबकि अल्लाह के बंदे अभी प्यासे हैं, अभी वो भूखे हैं,